ਕੱਪੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾ ਜਾਊਗਾ।
राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर यमुना तीर वन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ हरि जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव सिंह बिहारी जय राधा। पद प्रभु पद सुल प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद सुल प्रभु पद जय प्रभु मंगल हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदे सुभद्रा श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की श्री वृंदावन दास ठाकुर की श्रील प्रभुपाद की गाय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अध्याय 41 श्लोक क्रमांक 33 देह्यावयो समुचितानि अंगवासांसि चार्हतो भविष्यति परं श्रेयो दातुस्तेनात्र संशय देह्यावयो समुचितानि अंगवासांसि चार्हतो भविष्यति परं श्रेयो दातुस्तेनात्र संशय देह्यावयो समुचितानि अंगवासांसि चार्हतो भविष्यति परं श्रेयो दातुस्तेनात्र संशय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम् వందేహం శ్రీగరు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగరున వైష్ణవాశ్చ శ్రీరూపం సగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ కథితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమ జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే
ప్రతి రవివారి प्रीति भोज कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ पर जहाँ कहीं पर सत्संग कृष्ण कथा की बात आई है तो वहाँ पर एक शब्द आया है सदा नित्यम, क्योंकि कृष्ण कथा नित्य सेवन करने की वस्तु है। इसलिए हम मंगलाचरण में भी गाते हैं नित्यम भागवत सेवया, इस भागवत का नित्य सेवन करना चाहिए। और भी भागवत महात्म्य में भी कहा गया है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यह भागवत रूपी कथा जिसका सदा सेव्या, सदा सेवन करना चाहिए। और वह भी एक बार नहीं दो बार कहा सदा सेव्या हमेशा इसका सेवन करना चाहिए। और भागवत के प्रारंभ में ही श्रोताओं का आह्वान करते हुए, श्रोताओं को कथा के लिए प्रेरित करते हुए वेदव्यास मुनि कहते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। कहते कि हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, हे श्रद्धावान लोग, आप इस भागवत रूपी दिव्य अमृत का पान कीजिए और वह भी मुंह बारंबार इस रस का पान कीजिए। और पूछा जाए कि कब तक, तब कहते पीबत भागवतम रसम आलयम, आलय अर्थात मृत्यु, मृत्यु पर्यंत यह भागवत रूपी रस का पान कीजिए, इसको कभी छोड़िए मत। तो जहां कहीं पर भी भागवत सुनने की बात आई है, सभी जगह पर एक ही शब्द आया है कि यह नित्य सदा हर रोज करने की वस्तु है। क्योंकि हम लोग इस संसार में रहते हैं और इस संसार में रहने से संसार के जो दोष है, संसार की आसक्ति के कारण जो दोष आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि षड़ विकार, जो आत्मा के लिए विष के समान कहा गया है। आत्मा को यह दुर्गुण दुर्गति में, पतन में डालने वाले हैं, इसलिए इसको विष कहा है। और इस संसार के संग में रहने से यह जो विष है, संसार रूपी सर्प का विष, ये तो हमको चढ़ेगा ही। और इस विष की एकमात्र औषधि है कृष्ण कथा, भागवत। और इसलिए कहते हैं कि संसार में रहने से, हर रोज इसका संग करने से इसका जो विष चढ़ेगा उसकी औषधि है यह भागवत। और इसलिए हर रोज संसार का जैसे संग करते हैं, ऐसे ही हर रोज इस औषधि का भी संग करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे नेवला सर्प के साथ लड़ाई करता है, तो दोनों में लड़ाई होती है और जब सर्प उस नेवले को दंश देता है तो उसके शरीर में सर्प का विष व्याप्त हो जाता है। और तब तक वह दौड़कर ऐसी वनस्पति को जानता है कि जिसको सूंघने मात्र से, जिसकी गंध लेने मात्र से विष का सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो नेवला जाकर उस वनस्पति को सूंघ लेता है और फिर से आकर सर्प के साथ युद्ध करना, लड़ाई करना प्रारंभ कर देता है। और फिर से सर्प जब दंश देता है और उसका विष उसके शरीर में व्याप्त हो जाता है, तो फिर से वनस्पति उस वनस्पति को जाकर सूंघ लेता है और फिर आके लड़ाई प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे करते करते अंत में ऐसा समय आता है कि सर्प का सब विष नष्ट हो जाता है और वह भी नष्ट हो जाता है, वह भी मर जाता है, नेवले की जीत हो जाती है। तो ठीक इसी तरह भक्तों, यह संसार रूपी जो सर्प है उसका संग करने के कारण हमको उसका विष हर रोज चढ़ रहा है। और इस विष की औषधि क्या है? भागवत। इसलिए समय समय पर जाकर इस औषधि का सेवन कर लेना चाहिए ताकि यह विष का प्रभाव कम हो जाए। और एक समय ऐसा आएगा कि हम संसार की आसक्तियों से, दुर्गुणों से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और तब इस संसार की आसक्ति, यह विष भी हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। हमने एक सत्य घटना सुनी है, शायद राजस्थान की है, कि एक व्यक्ति, गांव की घटना है, कुर्सी पर बैठे थे और कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तब तक उसका ध्यान गया तो नीचे पैरों में उसके पैर के पास एक सर्प आकर ऐसे करके बैठा था। तो उस व्यक्ति ने देखा तो शायद हम लोग होते तो भाग जाते वहां से खड़े होकर, लेकिन उस व्यक्ति ने उस सर्प को देखकर उसके सामने कुछ ऐसा मुख कर रहे थे मानो सर्प को क्रोधित कर रहे थे, और ऐसे कुछ मुख के हाव भाव कर रहे थे। उसको देखकर वो सर्प एकदम क्रोधित हो गया। वैसे भी सर्प जन्म से ही क्रोधित होते हैं। कालिय ने भगवान को कहा है कि हम सर्प जाति से ही उग्र और जन्म से ही क्रोधी होते हैं। तो उस व्यक्ति को देखकर उस सर्प को इतना क्रोध आया कि जोर से उसने उसके पैरों में दंश मारा। और तब वह व्यक्ति उसको और चिढ़ाने लगा, उसके सामने मुस्कुरा रहे थे। तो उसको देखकर सर्प को और क्रोध आया तो जोर जोर से दंश देने लगा उसके पैरों में। और अंत में यह स्थिति हुई कि उस सर्प के दोनों दांत टूट गए और मुंह से विष उगलता हुआ वहां से भाग गया। क्यों जानते हो? क्योंकि उस व्यक्ति का एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो पैर दोनों कट गए थे, वो डुप्लीकेट पैर थे। तो बेचारा सर्प दंश देते देते थक कर भाग गया वहां से, उसका विष कुछ प्रभाव नहीं कर सका। तो ऐसे ही सत्संग के प्रभाव से, कृष्ण कथा के प्रभाव से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसार रूपी सर्प का जो आसक्ति रूपी दुर्गुण रूपी विष है वह हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था में ऐसी व्यवस्था की है कि हर रोज सुबह में और शाम को यह औषधि मिलती है, ताकि फ्री में बिल्कुल सब लोग यहाँ पर आए, इस संसार का जो विष है उसको नष्ट कर इस औषधि का सेवन करके नित्यम भागवत सेवया। तो ऐसे ही भगवत कथा की तो बहुत महिमा कही गई है। तो आइए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध से भगवान की एक मधुर मथुरा लीला का श्रवण करते हैं। जब कंस को नारद जी के द्वारा इस बात का ख्याल हुआ कि कृष्ण यशोदा के पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र है, तो तुरंत ही कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा। क्योंकि कंस सोचता है कि आज तक मैंने जिस जिस को वहां पर भेजा है वो कोई वापस नहीं आया, यद गत्वान निवर्तन्ते। तो अब ऐसा उपाय करता हूं कि उन लोगों को ही यहां पर बुलाकर कुछ ऐसा उपाय करके मार दूंगा। इसलिए अक्रूर जी को कंस ने भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। अक्रूर जी गए और दोनों भाइयों को लेकर वापस आए। मथुरा में जिस दिन पहुंचे उसी दिन मथुरा के बाहर एक उपवन था, बगीचा, उसके अंदर कृष्ण बलराम नंद बाबा इत्यादि सब रुके, वहां पर आराम करके दूसरे दिन अपराह्न के समय में अर्थात लगभग 3-4 बजे के समय भगवान श्री कृष्ण संकर्षणान्वित बलराम जी के साथ में सब गोप सखाओं के साथ में मथुरा की शोभा देखने के लिए निकले। और बहुत ही सुंदर मथुरा नगरी की शोभा का वर्णन है सुखदेव जी ने विस्तार से। जैसे जैसे भगवान कृष्ण की दृष्टि जा रही है ऐसे ही बिल्कुल वही हिसाब से मथुरा की शोभा का वर्णन किया है। और इतनी सुंदर मथुरा नगरी कि भागवत ने द्वारका की सुंदरता का, द्वारका का वैभव का इतना वर्णन नहीं है जितना मथुरा की सुंदरता और वैभव का वर्णन है। ऐसी सुंदर मथुरा नगरी को देखते हुए सभी बाजू ऊंचे ऊंचे भवन है, अनेक बगीचे उपवन इत्यादि है, सब कुछ देखते देखते भगवान अपने सखाओं के साथ मथुरा के राजपद से जा रहे हैं। और तब तक श्री कृष्ण क्या देखते हैं कि रजकम कश्चिद आयांतम, कोई एक रजक अर्थात धोबी जो कंस का राज्य का धोबी था और वो कंस के कपड़े को रंगने का कार्य करता था, और उसके साथ धोबी के साथ उसके अनेक सेवक थे जो कंस के सुंदर सुंदर धोतानी अर्थात स्वच्छ और निर्मल उत्तम उत्तम वस्त्रों को लेकर वह धोबी जा रहा था। और कृष्ण उसको सामने मिले और उस धोबी को आते हुए रंग कारम कश्चित गदाग्रज, गदाग्रज ने देखा वसुदेव जी की 7 पत्नियों में से एक के घर से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था गद, और जो श्री कृष्ण से छोटे थे इसलिए कृष्ण उसके बड़े भाई होने के नाते उसका एक नाम है गदाग्रज। तो कहते कि गदाग्रज भगवान ने उस धोबी को आते हुए देखा और जैसे ही नजीक आया तब कृष्ण कहते हैं, हे अंग, हे प्रिय भाई धोबी, देहियावयो, समुचितानि वासांसी चारहत, आपको जो उचित लगे तो हम लोगों के लिए योग्य वासांसी देही वस्त्र दीजिए। आपको कोई ऐसा फोर्स भी नहीं है कि बलजबरी पूर्वक नहीं है कि हमको दीजिए, नहीं, चारहत आपको जो योग्य लगे तो हे धोबी हम लोगों को हमारे लिए उचित वस्त्र दीजिए। क्यों क्यों दे? तब कहते भविष्यति परम श्रेय दातुस्ते नात्र संशय। हे भाई हमको देगा तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोग को भगवान कहते कि आज तक हमको जिस जिसने दिया है उसका परम कल्याण हुआ है, इसलिए हे धोबी तुम दोगे तो तुम्हारा भी परम कल्याण होगा, और ये सब मीरा रोड वाले भक्त देंगे तो उसका भी परम कल्याण होगा। जिस जिसने हमको दिया है उस सबका परम कल्याण हुआ है। दातुस्ते परम श्रेय नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान जानते हैं कि संसार के लोगों को इन्वेस्ट करने की आदत बन चुकी है, लोगों का स्वभाव हो चुका है इन्वेस्ट करने का। जहां कहीं पर भी उसे लाभ दिखता है वहां पर वह इन्वेस्ट करेंगे, और जहां उसे लाभ नहीं दिखेगा, कुछ फायदा नहीं दिखेगा, वहां पर वह इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बैंक वाले हैं, शेयर मार्केट वाले हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, सभी लोग आप देखिए सब अपनी अपनी जाहिरात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इसको सुनकर लोगों को हमारी कंपनी में कुछ लाभ दिखेगा तब तो वो इन्वेस्ट करेंगे, और लाभ नहीं दिखेगा तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए सबको आकर्षित करने के लिए सब कंपनी वाले अपनी अपनी जाहिरात करते हैं, और लोगों का भी स्वभाव है कि जहां कहीं पर भी उसे लाभ दिखता है वहां पर तो इन्वेस्ट करते हैं, और जहां कहीं पर उसे लाभ नहीं दिखता है वहां पर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कृष्ण भी सोचते हैं कि लोगों का इन्वेस्ट करने का स्वभाव हो चुका है, इसलिए जब तक मुझको देने से उसको क्या लाभ मिलेगा इस बात को नहीं जानेंगे तब तक मुझ में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए भगवान खुद ही अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि भाई हमको देंगे तो आपका परम कल्याण होगा। दातुस्ते परम श्रेय, श्रेय नहीं परम श्रेय, श्रेय का अर्थ है इहलोक में तो मंगल होगा ही, लेकिन परम श्रेय का अर्थ है कि इस लोक में शरीर छोड़ के जब परलोक में जाएंगे तो वहां पर भी हमको देने वाले का कल्याण होगा, और वह भी गारंटी के साथ कह रहे न अत्र संशय। श्लोक में दिख रहा है ना, दातुस्ते परम श्रेय नात्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है कि हमको देने वाले का परम श्रेय होगा। कौन कह रहा है? वह भगवान कह रहे हैं कि जिसके लिए श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से लेकर अंत तक सर्वत्र परम सत्य जिसके लिए संबोधन किया गया है वह भगवान कह रहे हैं। प्रारंभ में ही मंगलाचरण में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्मांधस्य यतोन्वयादितर तस्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयोत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? वेदव्यास मुनि। और उसी भागवत के मध्य में जहां पर भगवान कृष्ण मथुरा की जेल में है, देवकी माता के गर्भ में है, और जब भगवान का प्रागट्य का समय आया उसी समय सभी देवता सभी ऋषि मुनि मिलकर मथुरा की जेल में आते हैं भगवान कृष्ण की गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए। कौन कौन है उसमें? तब कहते कि तत्रेच्य ब्रह्म भवस्य मुनि भी नारद आदि। ब्रह्मा जी शिव जी जिसमें प्रमुख है प्रधान है, ऐसे सभी देवता लोग वहां पर आए और सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद इत्यादि सब वहां पर मथुरा की जेल में आए और देवकी माता के गर्भ में रहे हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और उस स्तुति के पहले ही श्लोक में सभी देवता लोग मिलकर कह रहे
सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
एक ही श्लोक में नौ बार सत्य कहते हुए देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उसका तात्पर्य है कि नौ यह पूर्ण अंक है, इसलिए नौ बार सत्य कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु आप ही इस संसार का पूर्ण सत्य है। तो प्रारंभ में वेदव्यास मुनि कहते मध्य में ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि सभी देवता लोग भगवान कृष्ण के लिए परम सत्य कह रहे और उसी भागवत का अंत करते हुए श्री सूत जी जो नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषि मुनियों को पुराणों की कथा सुना रहे और उस सुत गोस्वामी का ज्ञान कितना है, तो जिसके बारे में शौनक आदि ऋषि मुनि कहते हैं कि हे सुत जी आप जितने भी इतिहास है जितने भी पुराण है धर्म शास्त्राणी यान्युत जितने भी धर्म शास्त्र है स्मृति शास्त्र है उन सभी का आपको पूर्ण रूप से ज्ञान है, आपने उस सब का अध्ययन किया है और उतना ही नहीं उन सब के ऊपर आपने व्याख्या भी की है अर्थात उसके ऊपर आपने प्रवचन भी किए हैं और इतना ही नहीं यानी च वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण वेदों को जानने वाले में जो सर्वश्रेष्ठ है ऐसे भगवान बादरायण वेदव्यास जी वो जो कुछ भी जानते हैं वह सब आप जानते हैं और उसके सिवा अन्य च मुनयः परावर विदु और अन्य अन्य जो भी ऋषि मुनि है उसके पास भी जितना भी ज्ञान है वह सब तत् सर्वं तम विदु वह सब हे सुत जी आप जानते हैं। और वह सुत गोस्वामी भागवत का अंत करते हुए भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहते तत् शुद्धम विशोकम विमलम अमृतम सत्यम परम धीमहि जो पूर्ण शुद्ध है जो विमल है जो अमृत स्वरूप है उस भगवान श्री कृष्ण परम सत्य भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं। तो कहने का भाव भक्तों कि जिस भगवान के लिए सर्वत्र सत्य नहीं परम सत्य शब्द आया है वह सत्य संकल्प भगवान जिसका संकल्प आज तक कभी मिथ्या नहीं हुआ है जिसका वचन आज तक कभी मिथ्या नहीं हुआ है वह भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दातुस्ते नात्र संशय हमको देने वाले का परम मंगल होगा उसमें कुछ संशय नहीं है। लेकिन क्या करें हम जो बात कह रहे हैं वो हमको ही समझ में नहीं आ रही है। रूपा जी कुछ कृपा करे कि हम सब लोगों को इस बात समझ में आ जाए कि इन्वेस्ट करने के लिए गिरधारी जी से श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है और इसलिए भगवान यहाँ पर ऐसे हम लोग संसार में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कुछ गारंटी नहीं है कि हमको उसमें लाभ ही होगा। 2008 में जिन जिन लोगों ने जमीनों में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था उसका क्या हालत हुआ हम जानते हैं। हम सब लोग शेयर मार्केट वाले को तो अभी आधा पैसा नहीं मिल रहा है उसमें से, तो उसका कुछ संसार में इन्वेस्ट करने में कुछ गारंटी नहीं है कि हमको लाभ ही मिलेगा। लेकिन भगवान यहाँ पर गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हमको जो देगा उसका परम श्रेय परम मंगल होगा उसमें कुछ संशय नहीं है। स याति तो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः कौन मांग रहा है सुखदेव जी कहते कि स याचिता वह भगवान मांग रहे है जो सर्वतः परिपूर्ण सब ओर से पूर्ण है, अर्थात जिसको सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। सर्वतः परिपूर्ण जो अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में ही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद जिसका स्वरूप है, सुख के लिए जिसको संसार की वस्तु या संसार की कोई व्यक्ति की बात जाने दीजिए, लक्ष्मी सुधा की जिसको जरूरत नहीं है। तभी तो लक्ष्मी जी का जब प्रागट्य हुआ समुद्र मंथन के समय, और जब लक्ष्मी जी अपने योग्य पति को ढूंढने के लिए निकली, उसके हाथ में सुंदर पुष्पों की कमलों की माला थी, और सब देवता ऋषि मुनि सब उसके सामने लक्ष्मी जी के सामने देखकर लालायित होकर बैठे थे और देख रहे थे कि लक्ष्मी जी हमारा वरण कर ले। लेकिन लक्ष्मी जी ने सबके दोषों के ऊपर चिंतन करते हुए किसी को अपने योग्य नहीं समझा, और अंत में एक व्यक्ति वहां पर थे भगवान विष्णु, जिसको देखकर लक्ष्मी जी मन में सोच रही है कि ये एक पुरुष ऐसा है जो सब प्रकार से मेरे लायक है, सुमंगलम कश्चिन, पर उसमें भी क्या है, न कांक्षते ही माम, वो तो मेरे सामने देख नहीं रहे, यह सब लोग मेरे सामने देखकर बैठे लेकिन मेरे योग्य नहीं है, और यह पुरुष जो सब प्रकार से सब गुणों में मेरे योग्य है लेकिन वो मेरे सामने देख नहीं रहे, उसको तो मेरी कामना भी नहीं है। फिर लक्ष्मी जी सोच रही कि ठीक है, भले ही वो मेरे सामने न देखे लेकिन मेरे लिए उससे श्रेष्ठ, उससे सुंदर, गुणवान कोई पति नहीं हो सकता है, ऐसा विचार करके एवं विमृश्य रमा मुकुंदम वरम ववरे, ऐसा विचार करके लक्ष्मी जी ने मुकुंद मुक्तिदाता भगवान को वर के रूप में वरण कर लिया। तो कहने का भाव कि जो भगवान लक्ष्मी जी के सामने भी नहीं देख रहे उसको उसकी भी जरूर नहीं है सुख के लिए, फिर भी वो मांग रहे सब जगह पर, यहाँ पर मांग रहे, भगवद गीता में भी कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी पत्र पुष्प फल जो भी हो मुझे दीजिए, क्यों मांग रहे हैं? उसको सुख के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सुखी होने के लिए किसी ना किसी वस्तु की जरूरत है, बिना किसी वस्तु का आश्रय लिए हम लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। किसी को सुख प्राप्त करने के लिए धन चाहिए, किसी को गाड़ियों से बंगलों से सुख मिलता है, किसी को परिवार से, पुत्र से, पत्नी से सुख मिलता है, किसी को अच्छा अच्छा भोजन करने से सुख मिलता है, बिना किसी वस्तु से किसी को सुख नहीं मिल सकता है। किसी व्यक्ति को आप एक महीने तक किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए कि जहाँ पर वो किसी से मिल न सके, उसको कुछ दिया न जाए, कोई उससे बातचीत भी नहीं कर सके, पागल हो जाएगा, क्योंकि सुख नहीं मिलेगा किसी के आश्रय लिए बिना। लेकिन भगवान अपने आप में ही पूर्ण सुख स्वरूप है, फिर भी वह क्यों मांग रहे हैं? तो उसका उत्तर देते हुए प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, नेवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभ पूर्णो, हे प्रभु आप अपने ही लाभ से पूर्ण है, आपको नेवात्म अपने लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, फिर भी संसार के मायाग्रस्त जीव आपको कुछ अर्पण करते हैं, सेवा के रूप में, दान के रूप में, भेंट के रूप में आपको कुछ भी देते हैं, तो उसका दिया हुआ आप ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्यों? करुणो वृणीते, उस जीव के ऊपर करुणा करने के लिए आपको जरूरत नहीं होने पर भी आप उसके द्वारा दी हुई वस्तु का स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी जीव के पास से कुछ वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उसका मंगल नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा, और इसलिए करुणो वृणीते, करुणा पूर्वक आप उसका दिया हुआ स्वीकार करते हैं। और यद्यत जनो भगवते विदधित मानम, जो लोग भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी देते हैं तो देने से भगवान को कुछ लाभ नहीं है, देने वाले का ही उसमें लाभ है, देने वाले का ही उसमें सौभाग्य बढ़ेगा, उसकी ही सुंदरता बढ़ेगी। जैसे कहते हैं कि प्रति मुखस्य यथाश्री, जैसे कोई व्यक्ति अपना सुंदर श्रृंगार कर ले और अपना श्रृंगार करके कोई व्यक्ति कांच में देखे तो क्या उससे कांच की शोभा बढ़ेगी? व्यक्ति अपना मुख सुंदर बना ले, उसका श्रृंगार कर ले और बाद में कांच में देखे तो क्या कांच की सुंदरता बढ़ेगी? नहीं, वो कांच तो वो ही रहेगा लेकिन व्यक्ति का खुद का ही मुख उसमें सुंदर दिखेगा। ऐसे ही भगवान के लिए कोई देता है तो उसे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि देने वाले का ही उसमें मंगल होता है, उसकी ही सुंदरता बढ़ती है, उसका ही सौभाग्य बढ़ता है। और इसलिए भगवान यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि स याति, तो वह भगवान मांग रहे हैं जिसको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, जो सब ओर से पूर्ण है फिर भी मांग रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण ने इस तरह कहा उस धोबी को, तो एकदम क्रोधित हो गया कि ये गांव के ग्वाले हमारे पास मांग रहे हैं। वैसे भगवान उसके पास मांग तो रहे हैं, लेकिन क्यों, वो तो बाद में आएगा। लेकिन जब मांगा तो साक्षेपम ऋषित प्राह, वो तो भी अत्यंत क्रोधित हो गया, क्योंकि स्वभाव से एक तो दुष्ट बुद्धि का था और उस पर भी राज्य भृत्य, वो कंस का सेवक था, तो स्वभाव से दुष्ट और उस पर भी कंस जैसे स्वामी का सेवक था, इसलिए उसके अंदर घमंड अभिमान इतना था कि कृष्ण के इस तरह मांगने पर एकदम क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर कहता है कि ईदृशानीय वाचांसी, ऐसे वस्त्र चाहिए, नित्यम गिरी वने चरा, अरे तुम लोग हर रोज जंगल में जाते हो गैया चराने के लिए, पहाड़ों पर घूमते हैं, तो क्या ईदृशानी ऐसे वस्त्र को पहनकर जाते हो? दूसरे का अच्छा देखते हो, लूट लेने की भावना है? परिधत किम उदुर, अरे आप लोग इतने दुराचारी हो गए हैं कि राज द्रव्याणी अभिप्सत, राजा का धन भी लूट लेना चाहते हो? अरे मूर्खो याताशा, भागो यहाँ से बालिशा मूर्ख, मायेम प्रार्थ्य, दूसरी बार ऐसी बात कहना भी मत। यदि जिजीविषा, थोड़े दिन तक जीवित रहने की इच्छा है मन में तो माँ एवं प्रार्थ्य ऐसी बात कभी करना भी मत। बधनंती, अरे राज सेवक आप जैसे दुष्टों को, लुटारों को, चोरों को बांध देते हैं। धनंती, उसको मारते हैं, और लुम्पंती, उसका सब धन भी छीन लेते हैं। इसलिए हे दुष्टो भागो यहाँ से। एवं विकथ्य मानस्य, और जब इस तरह विकथ्य मानस्य, इस तरह जब वो बिना सिर पैर की बातें करने लगा तो कुपितो देवकी सुत, देवकी नंदन भगवान उसके ऊपर कुपित हो गए। भगवान सोच रहे कि एक तो इसके ऊपर कृपा करने के लिए मैं मांग रहा हूँ और उस पर भी एक कुपित क्रोधित हो गया और न कहने योग्य बातें करने लगा, तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, कहते कि रजकस्य कराग्रेण सिरह कायात अपातयत, उस रजक का सिर एक ही थप्पड़ में उसके मस्तक से अपातयत नीचे गिरा दिया। और कितना जोर से उसको चाटा मारा होगा। आज तक आप लोगों ने क्या ऐसा सुना है कि किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा हो और थप्पड़ मारते ही उसका मस्तक सिर से नीचे गिर गया हो? ऐसा सुना है? कितना भी जोर से थप्पड़ मारे, ऐसा सुना है कि 3200 बाहर निकल जाते हैं? सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन सिर उसके मस्तक उसके धड़ से अलग हो जाए ऐसा कभी सुना नहीं है, देखा भी नहीं है। फिर भी यहाँ पर भगवान की एक ही थप्पड़ से उस धोबी का मस्तक नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण को उस धोबी के प्रति बहुत ही पुराना क्रोध था। गर्ग संहिता में वर्णन है कि यही धोबी जो मथुरा का है, वही पूर्व में त्रेता युग में अयोध्या का धोबी था और जिसने सीता जी के बारे में उल्टी सुल्टी बात कही थी, और जिसके कारण भगवान को अपनी प्रिया सीता जी का त्याग करना पड़ा, क्योंकि उस समय भगवान कुछ कर नहीं पाए। उसका कारण है कि भगवान का अवतार ही, राम अवतार ही संसार को मर्यादा सिखाने के लिए हुआ था। तो भगवान अपने आचरण से उस समय दिखा रहे थे कि एक राजा का धर्म क्या है। राम उस समय राजा थे, तो प्रभु अपने चरित्र से दिखा रहे कि राजा को अपनी प्रजा को खुश करने के लिए कुछ भी त्यागना पड़े, कुछ भी बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको हर हालत में अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए। यह एक राजा का धर्म है। आज के नेता और आज के जो राजा है वो तो इस बात को कैसे समझ पाएंगे, लेकिन भगवान उस समय एक राज धर्म दिखा रहे थे, और इसलिए इच्छा न होने पर भी अपनी प्राण प्रिया सीता जी का त्याग किया था। पर वह तो भी उस समय तो कुछ नहीं किया, लेकिन आज जब अवसर मिला तो छोड़ा भी नहीं, एक ही थप्पड़ लगाया, उसका सिर मस्तक से धड़ से अलग हो गया। और उसके तस्यानुजीविन, उसके जो साथी थे, उसके सेवक थे, जो उसके साथ में गधों के ऊपर सब वस्त्र लेकर जा रहे थे, सर्व वासान कोचान विसृज्य, उसके पास जो भी कुछ था वह सब छोड़कर दुद्रुव सर्वतो मार्ग, जहां कहीं पर भी रास्ता देखा वह सब भाग गए। उसके पास जो भी वस्तु जो वस्त्र थे वो सब फेंक दिए, उसके खींचे में कुछ धन था वो भी वहां पर फेंक दिया, हाथ में कुछ आभूषण थे गले में थे वह सब भी उतार उतार कर फेंक दिया, और मोबाइल बोबाइल जो कुछ भी था वहां पर फेंक कर भाग गए। मन में सोच रहे कि ये लूटने वाले हैं, और अगर हमारे पास जो वस्तु है वो लूटने के लिए हमारे पीछे पीछे आए तो इस वस्तु के लिए हमको मार देंगे, तो सब कुछ वहां पर फेंक कर भाग गए। दुद्रुव सर्वतो मार्गम, सब भाग गए। और तब भगवान कृष्ण ने अपने योग्य उसमें से पीत वर्ण के वस्त्र को ले लिए, बलराम जी ने नीलांबर, और भी जो जो वहां पर उसके सखा थे अपने अपने योग्य सब ने जो अपने अपने लिए अनुकूल जो थे उचित वस्त्र थे वो सब पहन लिए, और शेषाणी जो बचे वो वहां पर ही छोड़ दिए, और सब उन वस्त्रों को पहनकर वहां से आगे चले। लेकिन वह सब वस्त्र थे कंस और उसके मंत्रियों के, जिसके शरीर थे पहाड़ के समान, और ये सब छोटे छोटे बच्चे थे। तो कुछ वस्त्र पहन तो लिए लेकिन कुछ फिटिंग नहीं हो रहा था, योग्य शरीर पर बैठ नहीं रहा था, उन सब जैसे ओढ़ लिया हो ऐसे करके जा रहे थे। और ऐसे में एक दर्जी था, उसने जब यह दृश्य देखा, ततस्तु वायक प्रीत गुणक नाम का एक दर्जी था, उसने कृष्ण बलराम और इन सभी सखाओं को देखा तो प्रीत एकदम प्रसन्न हो गया उसके रूप को देखकर, और तुरंत ही अपनी दुकान से वो बाहर आया नीचे, और हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, अगर आप आदेश दे तो मैं आपके वस्त्र योग्य कर दूं, आपके शरीर के अनुरूप बना दूं। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है भाई, कर दीजिए, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि हम लोगों को अभी मथुरा नगर देखना है, शहर देखना है, हमने कभी शहर देखा नहीं है, और शाम का समय है, अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए आप जल्दी कीजिए। और तब उस दर्जी ने अपनी कला से देखते देखते ही सबके वस्त्र इतने सुंदर बना दिए, अलग अलग रंगों का मैचिंग करते हुए सबके शरीर के अनुरूप बंद बेचते हुए सब वस्त्र सुंदर बना दिए। नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतु, कृष्ण और बलराम जी एकदम शोभा संपन्न सुंदर लगने लगे, वैसे स्वभाव से सुंदर थे, लेकिन जब इसने उस दर्जी ने वस्त्र उसके सुंदर बना दिए तो और भी शोभा संपन्न हो गए। और कैसे लग रहे थे, तब कहते स्व अलंकृतो बाल गजो पर्वणी, जैसे किसी उत्सव के समय पर बाल गज अर्थात हाथी के दो बच्चों को सजाया जाए। शीत इतर, सफेद और श्याम वर्ण के दो छोटे छोटे हाथी के बच्चे को किसी उत्सव या पर्व के समय पर सजाया हो, उसको तैयार किया गया और उसकी जैसी शोभा हो, ऐसे ही दोनों भाई बाल गज की तरह शोभायमान लगने लगे और तस्य प्रसन्नो भगवान। उस दर्जी की इतनी सी सेवा मात्र से तस्य प्रसन्नो भगवान, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। और प्रादात सारुप्यम आत्मन, उसको सारुप्य मुक्ति प्रदान कर दी, अर्थात शरीर छोड़ने के बाद अपने धाम में अपने भक्त का, अपने पार्षद का शरीर उसको दे दिया। और ये तो शरीर छोड़ने के बाद परलोक की बात हुई, लेकिन इस लोक में तब कहते श्रियम च परमाम लोके, इह लोक में इस संसार में परमाम श्रियम, परम संपत्ति, अढ़लक संपत्ति, स्मृति, ऐश्वर्यम, अनंत ऐश्वर्य और अपने चरणों की निर्मल स्मृति, भक्ति, इंद्रिय बलम और सभी इंद्रियों में बल, अर्थात भगवान ने उसको ऐसा वरदान दिया कि मृत्यु पर्यंत तुम्हारे शरीर में से एक भी इंद्रियों का बल कम नहीं होगा। यहाँ पर व्यक्ति जैसे ही श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय की, व्यक्ति की जैसे ही उम्र ढलती जाती है, शरीर की अवस्था बढ़ती जाती है, ऐसे ही प्रत्येक इंद्रियों की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जैसे जैसे उम्र जाती है, शरीर वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ता है, वैसे ही शरीर की प्रत्येक इंद्रियों की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। धीरे धीरे पैर काम करना बंद कर देंगे, हाथों से कुछ काम नहीं होगा, कान में सुनाई देना कम हो जाएगा और बाद में बंद भी हो जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, भोजन करेंगे तो पाचन नहीं होगा, शरीर कांपने लगेगा, सभी इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे करते बिल्कुल क्षीण हो जाती है। लेकिन कृष्ण ने उसको ऐसा वरदान दिया कि मृत्यु पर्यंत तुम्हारे शरीर में से एक भी इंद्रियों का बल कम नहीं होगा, ऐसा ही शरीर रहेगा, ऐसी इंद्रियों में यथावत शक्ति रहेगी। क्यों? उसकी थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न होकर, क्या सेवा की थी, बस उतना ही किया था उस दर्जी ने कि कृष्ण और बलराम के जो वस्त्र थे उसको ठीक कर दिया था, उसके शरीर के अनुरूप बना दिया था। इतनी सी सेवा से भगवान इतने प्रसन्न हो गए। महाराज जी कहते हैं कि एक बार जिसने भगवान कृष्ण को वस्त्र पहनाए तो उससे कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए, तो जो भक्त हर रोज कृष्ण की सेवा करते हैं उसके ऊपर वह कितना प्रसन्न होते होंगे, उसके लिए क्या करना। वैसे थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न होकर उसको भगवान ने दुर्लभ वरदान दिए और फिर वहां से आगे निकले। तो वहां से आगे जाते हुए मथुरा के राजपथ से थोड़ा सा हटकर भगवान ततो सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, सुदामा नामक एक मालाकार के भवन उसके घर पर गए। और जब सुदामा माली ने कृष्ण और बलराम को देखा तो एकदम प्रसन्न हो गया, सहसा उठाए वो अपने आसन से खड़ा हो गया और ननाम सिरसा भूवि, अपना मस्तक पृथ्वी पर रखते हुए दंडवत प्रणाम किया और सबका सुंदर स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन लाकर उसके ऊपर सबको बिठाया, सबके चरण धोए और जलपान इत्यादि कराकर अनेक प्रकार से पूजन किया और तांबूल दिया, शरीर के ऊपर सुंदर चंदन का, शीतल चंदन का लेपन किया। और सबको बिठाने के बाद अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर वह सुदामा माली प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, प्राह नह सार्थकम जन्म, हे प्रभु आज हमारा जन्म सफल हो गया, पावितम च कुलम प्रभु, हे प्रभु आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे सब पितृ देवता ऋषि ये सब लोग मुझ पर प्रसन्न हो गया, मैं सबके ऋण में से मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि यागमने न वाम, आप अपने भक्तों वैष्णवों को साथ में लेकर मेरे घर पधारे, आपकी और आपके भक्तों की चरण रज पढ़ने से ही मेरा सब कुछ सार्थक हो गया, मेरा सब कुछ पवित्र हो गया। हे प्रभु, भवंतो किल विश्वस्य जगतः कारणम परमम, आप ही इस विश्व के और इस जगत के परमम कारणम, परम कारण है। विश्वस्य जगतः, विश्व का अर्थ है यहाँ पे जो भी जड़ वस्तु दिख रही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और भी जो भी वस्तुएं है सब, पृथ्वी में से निकल रहा है सोना, स्टील, चांदी, क्रूड, पेट्रोल, डीजल, जो भी वस्तु है यह सब विश्व जड़ सृष्टि है, उसके कारण आप ही है। और जो चेतन सृष्टि है जगत अर्थात जितने भी जीवात्मा है उसकी सृष्टि भी आपने ही की है। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जितने भी जीव है वह सब मेरे ही अंश है। तो कहते इस जड़ जगत का और चेतन जगत का परम कारण, कारण नहीं परम कारण आप है। अर्थात इस सृष्टि को चलाने के लिए तो अनेक कारण है, अनेक लोकपाल है, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी इत्यादि, ये सब इस सृष्टि को चलाने के लिए कारण है, लेकिन उस कारण के भी कारण आप है। इसलिए तो ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण कौन है, ईश्वर नहीं है, परम ईश्वर अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के भी कारण है। और यही बात सुदामा मालिक कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही इस जगत के सभी कारणों के कारण है। आप इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, आपने यहाँ पर अवतार लिया है, तो एक ही कारण है, क्षमाय च भवाय च, इस लोक का क्षेम कल्याण करने के लिए और उसकी उन्नति करने के लिए आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और अब सुदामा माली, भगवान कृष्ण ने जो दो लीला की है मथुरा में, हमने जो सुना उसके ऊपर अपना कमेंट दे रहे हैं, जो धोबी के साथ कृष्ण ने किया और जो दर्जी के साथ कृष्ण ने किया, उस दोनों के ऊपर सुदामा माली अपना भाव प्रकट कर रहे कि नहीं वाम विष्माम दृष्टि सुहियदुर जगद आत्मनो, हे प्रभु आपकी दृष्टि में कुछ विषमता नहीं है, आपके लिए न तो कोई दुश्मन है, न कोई अपना प्रिय है, न कोई आपके लिए पराया है, न कोई अपना है, न द्वेष पात्र है, आपके लिए समय हो समयो सर्वभूतेषु सब समान है, आपके लिए किसी के प्रति कुछ भी दोष दृष्टि नहीं है, भेदभाव नहीं है, सबके लिए आप समान है, फिर भी आपका एक स्वभाव है क्या, भजंतम भजतोर अपि, आपका स्वभाव है कि जो आपका भजन करते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, आप भी उसकी सेवा करते हैं। यद्यपि आपकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आप भी उसकी भक्ति करते हैं, आप भी उसकी सेवा करते हैं। और भगवान स्वयं भी इस बात को भगवद गीता में कह रहे हैं कि समोहम सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरे लिए कोई द्वेष पात्र नहीं है, न मुझे कोई प्रिय है, समोहम सर्व भूतेषु सभी जीवों के लिए मैं सम हूँ, लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या मई तेषु चापि हम। एक ही श्लोक में दो बात कर रहे, पहले तो कह रहे कि मेरे लिए सब समान है, पर जो मेरी भक्ति करता है तो मई ते मैं उसका हूँ और वह मेरा है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मैं सम हूँ, लेकिन कब तक सम हूँ, जब तक मेरे भक्तों की बात नहीं आती तब तक तो मैं सम हूँ, जैसे ही मेरे भक्तों की बात आई तो मैं सब समता साइड पर धर देता हूँ, हूँ सब अपने वचन भी साइड पर रख देता हूँ और सब नियम भी साइड में कर देता हूँ और अपने भक्त का पक्ष लेता हूँ। तो सम तो हूँ, लेकिन जब तक मेरे भक्तों की बात नहीं आती तब तक सम हूँ, जैसे ही भक्तों की बात आई तो मैं अपने भक्तों का पक्ष लेता हूँ, भजंतम भजतोरपि। और इसलिए प्रहलाद जी बहुत सुंदर अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि हे प्रभु नेशाम परावरत्वम, आपकी दृष्टि में न तो कोई ऊंच है न कोई नीच है, संसार के जीवों में जैसे राग द्वेष है, किसी के प्रति राग है किसी के प्रति द्वेष है, आपकी दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो संपूर्ण जगत के सुयद है, संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले है, जगत आत्म सुयद, तथापि फिर भी आपका एक स्वभाव है सूर तरो रीवते प्रसाद, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आने वाले का सभी मनोकामना को पूर्ण करता है, लेकिन जो उसकी छाया में नहीं जाता है, जो उसका सेवन नहीं करता है, उसकी कामना कल्प वृक्ष कभी पूर्ण नहीं करता है। कल्प वृक्ष की सामर्थ्य है कि सभी की मनोकामना पूर्ण कर सके, लेकिन वो उसी की मनोकामना पूर्ण करता है जो उसका सेवन करे, जो उसके छाए में आ जाए। जो उसका सेवन नहीं करता है उसकी मनोकामना कल्प वृक्ष कभी पूर्ण नहीं करता है। ऐसे ही हे प्रभु आपका स्वभाव है कल्प वृक्ष के समान कि संसेवया ते प्रसाद, जो आपकी सेवा करता है वह आपकी कृपा को प्राप्त करता है, और जो आपकी सेवा नहीं करता है वो कभी आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते है। आपकी दृष्टि में कोई विषमता नहीं है। और कितनी कृपा प्राप्त करेंगे? तब कहते कि सेवानुरूपम उदितो ते प्रसाद, हे प्रभु सेवानुरूपम, जो जितनी सेवा करेगा उतनी ही आपकी कृपा का भाजन बनेगा। थोड़ी सेवा करेगा तो उतनी कृपा लाभ करेगा, ज्यादा सेवा करेगा तो उतनी, सेवानुरूप जितनी जिसकी सेवा है उतनी हे प्रभु वह आपकी कृपा प्राप्त करेगा। आपका स्वभाव कल्पुरुष के समान है, भले ही आप सम है, आपको किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं है, लेकिन इस संसार में सुदामा मालिक कह रहे हैं कि जो लोग हे प्रभु आपको नहीं मानते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं, वो लोग अपने ही किए हुए कुकर्म के फल स्वरूप इस संसार में दुख भोगते हैं, कष्ट पाते हैं, नष्ट होते और अंत में मरते हैं, जैसे यह धोबी। और जो लोग आपको मानते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, तो वह अपने ही किए हुए सत्कर्म के फल स्वरूप इस संसार में सुख प्राप्त करते हैं, आनंद पाते हैं और आपकी कृपा का लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे यह दर्जी गुणक। दोनों सामने है, दोनों ने अपना अपना किया हुआ फल पाया है, आपकी दृष्टि में कोई विषमता नहीं है। तो हे प्रभु ताव आज्ञा पयतम, आप सामने से चलकर मेरे घर पर आए हैं, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? किम अहम करवाणी भृत्यम, मैं आपका सदा से सेवक हूँ, आपका दास हूँ, हे प्रभु आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्योंकि इस संसार में जीवों के ऊपर आपका सबसे बड़ा अनुग्रह यही है कि भवद्भिर् यन्नियुज्येत, उस जीव को आप अपनी सेवा में लगाए। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात सुदामा मालिक कह रहे हैं कि हे प्रभु संसार के जीवों के ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा यही है कि उस जीव को आप अपनी सेवा में लगा लीजिए। क्योंकि जब तक जीव को आप अपनी सेवा में हे प्रभु नहीं लगाएंगे, तब तक यह जीव संसार की सेवा करता रहेगा। क्योंकि सेवा करना जीव का स्वभाव है, इसलिए बिना सेवा किए वो रह नहीं पाएगा, किसी ना किसी की सेवा करेगा ही। हम देखते हैं कि कोई कोई लोग राष्ट्र की सेवा करते हैं, कोई कोई समाज की सेवा करते हैं, कोई कोई परिवार की सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा करते हैं, किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप लोग अगर गौर की सेवा नहीं करेंगे तो माया आपको डॉग की सेवा कराएगी, लेकिन सेवा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सेवा है जीव का स्वभाव है। तो इसलिए ये सुदामा मालिक कह रहे हैं कि हे प्रभु जब तक जीव को आप अपनी सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक यह जीव संसार की सेवा करता रहेगा, और जब तक संसार की सेवा करेगा तब तक उसका संसार का जो बंधन है, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, वो और भी दृढ़ मजबूत होता जाएगा। लेकिन जब यह जीव आपकी सेवा में लग जाएगा, वैसे ही तुरंत इसका संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। इसलिए संसार में जीवों के ऊपर अति अनुग्रह येश, अति अनुग्रह है कि उस जीव को आप अपनी सेवा में लगाए। वैसे भगवान किसी जीव को कुछ धन संपत्ति दे दे, कुछ परिवार पुत्र इत्यादि दे दे, तो यह भी कृष्ण की कृपा है, लेकिन यह सामान्य कृपा है। सर्वश्रेष्ठ अति अनुग्रह, अति कृपा क्या है, तो कहते हैं कि बस उस जीव को भगवान अपनी सेवा में लगा ले, यही उसके लिए अति अनुग्रह सबसे श्रेष्ठ कृपा है। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे भी अपनी सेवा में लगाए, मुझे भी कुछ आपकी सेवा का अवसर दीजिए। जब उस सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान के मन की बात वो समझ गए, तो बिना कहे ही सुदामा ने सुंदर सुंदर पुष्पों की माला बनाकर सुदामा प्रीतमानस शस्ते सुगंधे सुगंध युक्त कुसुमेर माला विरचिता, सुंदर सुगंधी और ताजे पुष्पों की माला बनाई। क्योंकि सुदामा माली जो माला बनाने की कला में उतने आगे थे कि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि किस ऋतु में किस पुष्पों की माला बनानी चाहिए और किस पुष्पों के साथ किस पुष्पों का मेल करने से उसकी सुगंध और बढ़ जाए, उसकी सुंदरता और बढ़ जाए। यह सब कला सुदामा माली अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उसने सुंदर सुंदर माला बनाकर दोनों भाइयों को और सभी गोप बालकों को पहनाई। और ताभि स्वलंकृत प्रीतो कृष्ण रामो, और उससे जब माला से अलंकृत हो गए तब कहते कि प्रीतो भगवान कृष्ण और बलराम जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। क्यों? मात्र उस सुदामा माली ने दोनों भाइयों को पुष्पों की माला पहनाई थी, और माला पहनाने मात्र से प्रीतो कृष्ण रामो, कृष्ण और बलराम प्रसन्न हो गए। देखिए सभी प्रसंग में तात्पर्य सार यही है कि भगवान थोड़ी थोड़ी सेवा से भी जीव के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। दर्जी ने क्या सेवा की थी फिर भी प्रसन्न हो गए, ये सुदामा माली ने सिर्फ माला पहनाई थी तो उतने से ही भगवान कृष्ण उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। और हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। 100 काम हम अच्छे करेंगे लेकिन गलती से एक काम खराब हो गया तो अच्छे काम को याद नहीं करेंगे, जो गलत कार्य किया है उसी को सब याद करते हुए निंदा करते फिरेंगे। तो संसार को कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन हम प्रसन्न नहीं कर सकते। पर भगवान का स्वभाव एक अलग है कि कोई उसकी थोड़ी भी सेवा कर दे तो थोड़ी सी सेवा से ही कृष्ण रीझ जाते हैं, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे सुदामा माली ने सुंदर माला पहनाई, इतने मात्र से कृष्ण प्रसन्न हो गए और कहते हे सुदामा, मैं आपके ऊपर परम संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, जो भी आपके मन में कामना है आज मेरे पास से वरदान मांग लीजिए। तब सुदामा माली बहुत सुंदर वरदान मांगते। सीखने जैसा है कि जगन्नाथ जी के पास से क्या मांगना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं कि सोपी ववरे अचलाम भक्तिम, क्या मांगा कि हे कृष्ण आपके चरणों में मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। क्योंकि इस संसार में भगवान को प्राप्त करने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो एकमात्र भक्ति है। भक्ति के सिवा अन्य किसी भी साधन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह हमें कृष्ण का दर्शन करा दे, वह हमें कृष्ण की प्राप्ति करा दे। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, तुम जो यह मेरा रूप देख रहे हो, द्विभुज श्याम सुंदर मुरली मनोहर रूप, इस रूप का दर्शन सुदुर्लभम रूपम इदम यन्माम दृष्टवानसी, तुम जो देख रहे यह मेरा रूप सुदूरदर्श अत्यंत दुर्लभ है इसका दर्शन। अरे देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण, हे अर्जुन देवता भी नित्य आशा बनाए बैठे हैं मेरे इस रूप के दर्शन की, लेकिन उसके लिए भी सुदूरदर्शन अत्यंत दुर्लभ है मेरे दर्शन। न वेदे न तपसा न दाने न चिज्जया, मेरे इस रूप का दर्शन न तो अनेक प्रकार से वेदों का अध्ययन करने से होता है, न अनेक प्रकार से दान देने से, न तपस्या करने से, और न ही अनेक प्रकार के यज्ञ इत्यादि पूजन करने से भी मेरे इस रूप की प्राप्ति होती है। तब भक्त्या तो अनन्यया अहम एवं विदो अर्जुन, हे अर्जुन मात्र और मात्र भक्ति के द्वारा ही मैं इस रूप में सुलभ हूँ, प्राप्त हो सकता हूँ, अन्य किसी भी साधन से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि प्रियते हरि अमलया भक्तया अन्यत विडम्बनम, भगवान कृष्ण मात्र शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, अन्य जो भी साधन है वह सब विडम्बना मात्र है, आडम्बर मात्र है। भक्ति के सिवा कृष्ण को कोई भी साधन प्रसन्न नहीं कर सकता है। और इस कलयुग में तो भक्ति और भी सरल बनाई गई है, मात्र बस महामंत्र का जप करना यही इस कलयुग में भक्ति है। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
तो इसलिए सुदामा मालिनी भगवत प्राप्ति का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वह भक्ति कृष्ण के पास मांगा। और दूसरा क्या मांग रहे, तद भक्तेषु सौहार्दम, हे प्रभु आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता बनी रहे। पहले तो भक्ति मांगी, लेकिन भक्ति को टिकाने का साधन क्या है, वैष्णवों का संग। जब तक वैष्णवों के साथ मित्रता नहीं होगी तब तक भक्ति टिकेगी नहीं। इसलिए भक्ति तो मांगी, लेकिन भक्ति को टिकाने के लिए अब कहते कि हे प्रभु आपके जो भक्त है ऐसे वैष्णवों के साथ मेरी मित्रता बनी रहे। अनेक भक्तों ने भगवान के पास से यह वरदान मांगा है। सबसे पहले परीक्षित महाराज जब श्राप लगा ब्राह्मण कुमार के द्वारा और सब कुछ छोड़कर गंगा तट पर आ गए, और वहां पे पहले से सभी ऋषि मुनि आकर बैठ गए थे, और सभी के चरणों में परीक्षित महाराज प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों मुझे अब किसी बात का भय नहीं है, तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा, मैं आप सब ब्राह्मणों के चरणों में हूँ, पास में भगवती भागीरथी गंगा जी बह रही है, मैंने अपने चित्त में अपने इष्टदेव भगवान कृष्ण को धारण कर लिया है, इसलिए ब्राह्मण कुमार के द्वारा भेजे गए उस तक्षक का अब मुझे कोई भय नहीं है, बस एक ही आशा है गायत्री विष्णु गाथा, आप मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। और हे ऋषियों अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक वरदान दीजिए, क्या, पुनश्च भूयात भगवती अनंते रति, कर्म के अनुसार मेरा जिस जिस योनि में जन्म हो बस आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जहां कहीं पर भी जाओ लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। पुनश्च भूयात भगवती अनंते रति, और मैत्रेयस्तु तद आश्रयेषु, और कृष्ण के आश्रित जो भक्त है वैष्णव है उसके साथ मेरी मित्रता बनी रहे, बस यह आशीर्वाद दीजिए। मुझे मुक्त भुक्त नहीं होना है और संसार की और भी कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस हे ऋषियों आप इतनी कृपा कीजिए कि कृष्ण के भक्तों के साथ मेरी हमेशा मित्रता बनी रहे। और परम भागवत वृत्रासुर भी अपनी चतुर्श्लोकी प्रार्थना में अंत में कृष्ण के पास यही मांग रहे हैं, मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम संसार चक्रे प्रमत स्वकर्म भी, हे प्रभु स्वकर्म भी संसार चक्रे भ्रमत, मैं अपने कर्म के अनुसार संसार चक्र में कहीं पर भी जन्म लू लेकिन बस यही प्रार्थना है कि उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, आपके जो जन है, आपके जो भक्त है, उसके साथ मेरी मित्रता बनी रहे। जिस लोगों को इस संसार में पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति इसी में जिसकी मति लगी हुई है, ऐसे लोगों के साथ हे प्रभु न भूयात, भूल से भी कभी मेरा संग न हो, इसके साथ मेरा कभी मिलाप न हो। बस यही कृपा कीजिए कि जन्मों जन्म तक आपके भक्तों का मुझे संग मिलता रहे। और यही प्रार्थना आज सुदामा माली यहाँ पर कृष्ण के पास से मांग रहे हैं कि तद भक्तेषु सौहार्दम, आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता बनी रहे। और कहते अंत में कहते भूतेषु च दयाम पराम, संसार के जीवों के ऊपर मेरी परम दया बनी रहे। अर्थात देखिए, पहले क्या मांगा, भक्ति मांगी, फिर उस भक्ति को टिकाए रखने के लिए भक्तों का संग मांगा, और अब इस भक्ति का प्रचार करने के लिए कहते कि जीवों के प्रति मेरा दया की भावना बनी रहे। क्योंकि जब तक हृदय में दया नहीं होगी तब तक प्रचार नहीं होगा। वैष्णव लोग प्रचार करते हैं तो बस इसी कारण कि उसके हृदय में दया है कि संसार में जो जीव जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे, उसको कृष्ण की भक्ति में लगाकर उसको इस संसार के बंधन से मुक्त कर दिया जाए। विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि जनस्य कृष्णात विमुखस्य देवात सुदुखितस्य, इस संसार में मनुष्य कृष्णात विमुखस्य, भगवान कृष्ण से विमुख हो गए। क्यों? तो के देवात, उसके दुर्भाग्य के चलते कृष्ण से विमुख हो गए हैं, और इसी कारण सुदुखितस्य, दुखी नहीं है, सुदुखी, अत्यंत दुखी है। संसार का जो सबसे बड़ा दुख है यह जन्म मृत्यु रूपी चक्र, इसमें अनेक अनेक जन्मों से चक्र काटते हुए दुख भोग रहे हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर अनुग्रह एव चरमति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, जनार्दन भगवान के जो भक्त है ऐसे वैष्णव, ऐसे जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जो कृष्ण से विमुख हो गए हैं, उसको कृष्ण के सन्मुख करने के लिए ही सर्वत्र विचरण कर रहे हैं, सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए तो इस बात का प्रभुपाद जी से बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है। जिसने संसार के जीवों को इस संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी साधना छोड़कर अनेक प्रकार का कष्ट सहन करते हुए श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका में गए। क्यों? बस यही हृदय में भावना थी कि ये जो लोग कृष्ण से विमुख हो गए उसको कृष्ण की भक्ति में लगाकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देना है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस दया से ही प्रेरित होकर प्रचार किया। तो इसलिए यह सुदामा माली भगवान के पास तीसरा वरदान मांग रहे हैं कि संसार के जीवों के प्रति मेरी अपार दया, परमाम दया बनी रहे। और ददतु वरदोर वरान, भगवान ने सुदामा को जो जो वरदान मांगे वह तो दिए ही, अब अपनी ओर से दे रहे हैं। सोपी ववरे इति तस्मे वरम दत्वा, अब भगवान अपनी ओर से वरदान दे रहे हैं। क्या? श्रियम च अन्वय वर्धिनम, हे सुदामा आपने जो मांगा है वो तो मैं देता ही हूँ, अब और भी दे रहा हूँ। क्या? श्रियम च अन्वय वर्धिनम, तुम्हारे वंश में संपत्ति अन्वय वर्धिनम निरंतर बढ़ती रहेगी, तुम्हारी पीढ़ियों तक कभी तुम्हारे वंश की संपत्ति नष्ट नहीं होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। बलम, तुम्हारे इंद्रियों में बल कभी कम नहीं होगा। आयुष्य, तुम्हारा आयुष्य क्या है सुदामा, तुम्हारी पीढ़ियों में किसका अकाल मृत्यु नहीं होगी, किसी की, सबकी आयुष्य यथा समय तक टिकी रहेगी। आप यश, तुम्हारे कुल का यश संसार में फैला रहेगा। और कांतिम, तुम्हारे शरीर से कभी तेज नष्ट नहीं होगा। निर्जग्राम सहाग्रज, ऐसे दुर्लभ वरदान भगवान ने उस सुदामा माली को दिए। देखिए, भगवान का सभी देवताओं से यह एक विलक्षण स्वभाव है कि अपने भक्तों को जो मांगते हैं वह तो देते ही है, लेकिन नहीं मांगने पर अपनी ओर से भी कुछ देते हैं। और इसीलिए गजेंद्र जी कहते हैं कि यम धर्म अर्थ कामात यम धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम भजन्ते इष्टाम गतिम आपनुवंती। हे प्रभु, कोई जीव इस संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए आपका भजन करते हैं तो इष्टाम गतिम आपनुवंते, आप उसका अभिष्ट तो उसको प्रदान करते ही है। किंतु आशीष देहम अव्ययम राशि, किंतु आप अपनी ओर से एक और वरदान देते हैं, क्या उसको अव्यय देह देते हैं, अर्थात जिस शरीर का कभी नाश नहीं होता है ऐसा अपना पार्षद शरीर देते हैं, यह आपका स्वभाव है, और किसी के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं है। और इसीलिए हे प्रभु, मैंने आपको बचाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि और देवताओं को मैं प्रार्थना करता तो वो आकर इस ग्रह के संकट से तो मुझे मुक्त करा देते, लेकिन फिर यह जो हाथी का शरीर है, यह गज योनि, यह संकट तो बना ही रहता, जन्म मृत्यु का चक्र तो बना ही रहता, लेकिन आपका यह स्वभाव है कि आप जीव को इस बंधन से, अपना भजन करने वाले को न मांगने पर भी इस शरीर बंधन से मुक्त करके उसको अविनाशी देह देते हैं। तो ऐसा दुर्लभ वरदान देकर भगवान यहाँ से आगे निकल गए। तो कहने का भक्तों, इस लीला कहने के पीछे एक ही तात्पर्य था कि दो तीन लीला है लेकिन उसके अंदर सिद्धांत और विशेष कृष्ण कितने कृपाणु है उसका स्वभाव बताया गया है। और इसी को चलते मैंने यहाँ पर कहने का कुछ प्रयास किया, इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप सब भक्त लोग क्षमा कीजिए। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की।
हे कृष्णा 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 हे हरे, हरे राम 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 हरे।